ओम शांति। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हो, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप ना जानते हो और जिसकी डिटेल्स में बहुत गहराई से हमें जानने की जरूरत हो। एनवायरमेंट क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पोल्यूशन है, ऑलरेडी आप जानते हो और आपने पढ़ा भी है। वी ऑल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ, अच्छा, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हाँ वाटर, वाटर रिसोर्स है। ओके, हाँ वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, तो उसको हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं बाय नेचर हमें ये मिल रहे हैं। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो हमें जो ये चीज हमें मिल रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट होती जा रही है, क्योंकि हम उसका ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और उनका वन पार्ट हिस्सा ही हम यूज करते हैं और टू पार्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हार्मफुल केमिकल्स में, हार्मफुल गैसेस में, हाँ, जो हमारे एनवायरमेंट को ओवरऑल पल्यूट कर रहे हैं। और रिजल्ट क्या है कि हम इतना कंजप्शन कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आज वो रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो अगर हम आज ही सारा जितने रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम कहते हैं, वो अगर आज ही कंज्यूम कर लेंगे तो आने वाली जनरेशंस के लिए वो नहीं बचेगा। इसलिए दिस इज वन इनिशिएटिव टेकन बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू सस्टेन द रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आज की जनरेशन को भी सस्टेन करें और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को भी वो सस्टेन करते रहे, उनके लिए भी बचे रहे। तो इस तरीके से अगर हम उसको उसको यूज करें, उसको यूटिलाइज करें, सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये एक थ्री लेग्ड स्टूल है जिसमें आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी। तो इन तीन चीज के बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी कंट्रीज मिलकर के अपने पास जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे पहले बताया कि जो हमारे रिसोर्सेज बचे हैं उनको हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए यूज करें। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, हमारी जो इकोनॉमी है, जो प्रेजेंट इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम जिस जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी फुलफिल होती रहे आज की जनरेशन की और आने वाली जनरेशन की भी फुलफिल होती रहे, तो वो भी सस्टेन रहे। थर्ड है सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हमारी एजुकेशन, कम्युनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपॉर्चुनिटीज, वो सारी चीजें आ जाती है कि हमारा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो भी डिस्टर्ब ना हो आज का और आने वाली जेनरेशन्स का। तो इसलिए ये थ्री लेग्ड टूल बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर, हम इन तीनों कैटेगरीज को लेकर के चलते हैं, यही इसमें बताया गया है। तो सस्टेनेबल एनर्जी, कौन कौन सी सस्टेनेबल एनर्जीज हमारे पास है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी आप सब जानते ही हैं, विंड एनर्जी वो भी आप सब जानते हैं, जियोथर्मल एनर्जी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? आपने देखा होगा ना, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं कहीं कहीं पर, पानी अपने आप से ही गर्म रहता है ना, कुछ लेक्स ऐसी होती है जिसमें पानी बहुत हीटेड रहता है, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। तो वो कहां से वो गर्म हो रहा है, वो पानी अपने आप से ही, वो पानी कैसे गर्म हो रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर की जो हीट है, चाहे वो वॉल्केनोज के फटने से या मैग्मा जो रोटेट होता है अर्थ के अंदर उसके कारण से भी अर्थ के ऊपर का पानी और अंदर का पानी या अंदर की रॉक्स वो हीट हो जाते हैं. उस हीट को, उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं हाँ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी मीन्स टाइडल एनर्जी जो वेव्स के थ्रू हमें मिलती है. बायोमास एनर्जी जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स पानी से जो बनती है. तो सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी क्या है उसके बारे में बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारी सस्टेनेबल है ही है क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इजीली हमें अवेलेबल है और इन अबंडेंट मतलब हमेशा ही हमारे पास है. लेकिन एक न्यूक्लियर एनर्जी है जो रिन्यूएबल नहीं है बट स्टिल इट इज सस्टेनेबल क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी किस चीज से बनती है हाँ जो फिशन रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू बनती है और वो फिशन रिएक्शंस बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है लेकिन एनर्जी कितनी ज्यादा बनती है सो दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबल बट इट पल्यूट्स द एनवायरमेंट. और पल्यूशन किसके कारण होता है हाँ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे जैसे कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस तो उसके कारण से पल्यूशन होता है. सो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस बताए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में जो बुक में आप थोड़े डिटेल में जा सकते हो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गोल्स क्या है जो यूनाइटेड नेशंस ने रखे हैं. पहला कि नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी. सो बेसिकली जो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी ये गोल्स बनाए गए हैं जिसमें हम पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे और ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे गोल्स होने चाहिए वो सभी सस्टेन्ड हो और वो सभी मीट हो. तो इसमें ये भी बताया गया है कि हमारा जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, जो एनवायरमेंट में हम जो चेंजेस देख रहे हैं उनको भी हम कैसे मीट कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी गोल्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कि हम सभी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने और कितना यूज करना है, ओवर यूज नहीं, जितना यूज करना है उतना हम इस्तेमाल करें. क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे का जो की जो लाइफ है, जो मछलियां हैं या जो सी क्रिएचर्स हैं बेसिकली उनके लिए भी सोचा गया है. पीस एंड जस्टिस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. तो ये पार्टनरशिप के लिए बेसिकली कितनी कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस ने समिट्स कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की हैं जिसमें कितनी कंट्रीज को मिलाकर के जो आज सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है पॉल्यूशन क्रिएट करने में और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां दिखाई दे रहा है तो वो उन सबको मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक हाथ आगे बढ़ाया है. तो ये यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंसेज जो की हैं जैसे रियो 2012, रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंसेज दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड. फिर हम आते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, आपकी सेकेंड यूनिट है इस सीरीज में. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है आप सब जानते ही हैं, लाइक लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हाँ और एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन किसके कारण से होता है, क्या होता है, हमारी जो लैंड है उसका जो टॉप लेयर है जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल, और वो कंटेमिनेट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है, हम उस वो किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं और वो ही सॉइल डायरेक्ट हमारे हाँ बॉडी के ऊपर असर करता है, कितनी चीजों पे, प्लांट्स पे असर करता है, क्लाइमेट पे असर करता है. तो उसका कंटेमिनेशन आजकल जो हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हम देख रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो ऐसे बहुत सारे चीजें जिनके जो डंप होता है डायरेक्टली टॉप लेयर में और एक और कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों को काट देते हैं और पेड़ जब जब जैसे आंधी चलती है तो पेड़ जो क्या करता है, टॉप सॉइल को रिटेन रखता है, उसकी रूट्स में क्या होती है, टॉप सॉइल बंध के रखती है। लेकिन जब आंधी चलती है तो खाली मैदान से वो टॉप सॉइल क्या होती है, हाँ, उड़ जाती है। तो जो फर्टिल, जो सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है हमारी, मोस्ट फर्टाइल पार्ट है, उसके अंदर वो फर्टिलिटी रेट ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन एक भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम देख रहे हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंड पोल्यूशन। इसमें मैन और नेचर दोनों का हाथ है। नेचर के कारण क्या होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस और सुनामीज, इसके कारण से भी लैंड पोल्यूशन होता है। वॉल्केनिक इरप्शंस से जो केमिकल्स इरप्शन के बाद निकलते हैं उससे एसिड रेन बनता है। जब बारिश होती है तो वही केमिकल्स जो हवा में है वो पानी में डिजोल्व होकर के धरती पर आ जाता है और वही फिर जब हमारी टॉप लेयर में मिक्स होता है, इट कंटेमिनेट्स इट। तो ऐसे ही हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स के ऊपर, वो जब बारिश पड़ती है तो वो इट क्रिएट्स कंटेमिनेशन, पोल्यूशन। और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेलीविजन सेट्स, प्लास्टिक प्लेट्स, रबर टॉयज, देयर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो ये मैन मेड कॉजेज हैं जो बताए हैं, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स भी हमने देखे और हमारी स्किन के ऊपर भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर लैंड पोल्यूशन। द सॉल्यूशन इज मेक पीपल अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस एंड रिसाइकल। जितना हम रिसाइकल करेंगे, प्लास्टिक है, हम घर से, हम अपने घर में कभी कचरा टेबल पे, हाँ, डाइनिंग टेबल पे या ऐसे ही डालते हैं क्या? नहीं डालते ना। लेकिन हमने संतरा खाया, केला खाया और गाड़ी के बाहर फेंक देते हैं, हाँ, प्लास्टिक है कुछ भी, तुरंत फटाफट बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आप देखो, इंडिया में इट इज फ्रीली अलाउड, है, यू कैन थ्रो थिंग्स लाइक दिस। लेकिन बाहर जाएंगे तो उसी चीज के लिए आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है, राइट? तो इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि हम खुद से ये स्वच्छ भारत अभियान अपने अंदर चलाएं कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें और जो भी वेस्ट है उसे एक जगह इकट्ठा करके, हाँ, अगर हम रिसाइकल उसको रीयूज कर सकते हैं देन दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज उसको हम डस्टबिन में ही डालें। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये तो हमारे जो यौगिक खेती करने वाले भाई हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से दिखाया, दे आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स, एनी फर्टिलाइजर्स, यूरिया कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट स्टिल यू कैन सी कि सिर्फ योग के माध्यम से भी उनका जो फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं वो कितने अच्छे और कितने न्यूट्रिशियस हैं। देन नेक्स्ट इज अवॉइड बाइंग पैकेज आइटम्स एज दे विल लीड टू गार्बेज एंड एंड अप इन लैंडफिल साइट। सो क्रिएट डंपिंग ग्राउंड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर द लैंड पोल्यूशन। देर आर मोर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज द मोस्ट असेंशियल थिंग। और जैसे लैंड पोल्यूशन हो रहा है, इन द सेम वे वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। और पानी में, पानी तो ऐसी चीज है जिसमें हम एक बूंद की भी, हाँ, एक बूंद भी अगर उसमें पल्यूट हो जाए तो जैसे पूरा, हाँ, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो वो अगर वो छोटा सा भी कंटेमिनेशन पानी का हमारी बॉडी नहीं ले सकती है। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लीन वाटर। तो इसलिए जो पानी का जो पोल्यूशन है वो किस कारण से, कितने टाइप्स का है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर मीन्स द वाटर विच इज अवेलेबल टू अस, जो लेक्स में है, जो रिवर्स में है, हाँ, जो पॉन्ड्स में है, उस पानी का, जो वेल्स में है, तो उस पानी का कंटेमिनेशन, ऑयल पोल्यूशन, जो ऑयल इंडस्ट्रियल जैसे रिफाइंड ऑयल बनता है तो उसका जो वेस्ट जाता है वो सारा नदियों में उसको डिस्पैच कर देते हैं, तो वो भी एक ऑयल पोल्यूशन है। या फिर जो ऑयल कैरी करने वाले शिप्स हैं वो बहुत बार डूब जाते हैं, तो जहां डूबे हैं वहां सारा ऑयल समुद्र के ऊपर आ जाता है, जिससे जो सी क्रिएचर्स हैं वो मर जाते हैं. एंड इट इज सो हार्मफुल. एंड देर हैज बीन सो मेनी एक्सीडेंट्स लाइक दीज. केमिकल वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज का केमिकल ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जो धरती के नीचे ग्राउंड वाटर जो हम लेते हैं. थर्मल पोल्यूशन, थर्मल वाटर प्लांट्स, जो थर्मल प्लांट्स जो होते हैं उनका जो रिफाइंड कूलेंट्स जो होते हैं, जो यूज करते हैं उसको कूल करने के लिए, वो कूलेंट रिवर्स में डिस्पोज कर दिया जाता है, तो वो बहुत पोल्यूशन फैलाता है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल पोल्यूशन. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, इसमें आ जाता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पैथोजेंस, न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लाइक सॉल्ट एंड मेटल्स. सोचिए मेटल, मेटल अगर पानी में मिल जाए और हम उसको कंज्यूम कर लें तो क्या हालत होगी हमारी. थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, उसका एक एग्जाम्पल आपने देखा ही है, जब जापान में अर्थक्वेक प्लस एक सुनामी प्लस वहां पर क्या हुआ था, तो वहां पे जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट था वो सारा न्यूक्लियर वेस्ट जो भी था वो उस पानी में मिक्स हुआ था, ओशन में मिक्स हुआ था, तो उसके कारण से कितना कंटेमिनेशन था, उससे एसिड रेन भी बनी. तो ये उस रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट भी बहुत ज्यादा डेंजरस है. और इंडिया में मेजर कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन के, अर्बनाइजेशन. सो देयर इज ओवर अर्बनाइजेशन, मींस बहुत सिटीज बहुत डेवलप हो गया है, सब अर्बन हो गया है. इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, विड्रॉल ऑफ वाटर, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस. आजकल विड्रॉल ऑफ वाटर मींस बारिश पड़ती है लेकिन वो धरती में नहीं जाती है, क्योंकि सब सीमेंट हो गया है आजकल, सब कुछ सीमेंट कर दिया है, तो पानी कहाँ जाता है, सीवेज में जाता है, पानी धरती के अंदर जाता ही नहीं है, तो पानी की ही कमी है. फिर डिफॉरेस्टेशन, डैमिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स पे डैम्स बना दिए हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स एंड माइनिंग एंड एनर्जी यूज. द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर ऑन ह्यूमंस कौन से हैं, पेस्टिसाइड्स का, दे डैमेज द नर्वस सिस्टम, दे कॉज कैंसर. सो दे आर सो मेनी थिंग्स. ये सभी वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. रेमेडीज क्या है, दैट यूज द फ्यूअर केमिकल्स टू क्लीन योर होम, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, डोंट फ्लश द मेडिकेशन. जो दवाइयां हैं उनको हम फ्लश ऑफ नहीं करें. और कीपिंग वार्ड पोल्यूशन फ्री, डोंट यूज पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रिमूव द कॉन्क्रीट सर्फेसिस एंड रिप्लेस देम विद ग्राउंड कवर. सीमेंटेड जगहों को थोड़ा घास जैसा लगा करके बना दें. प्रिवेंट द सॉयल इरोजन, एक्सपैंडिंग द रीच, हेल्प क्लीन अप लिटर इन वाटर फील्ड एरियाज, स्पीक अप अबाउट वाटर इश्यूज दैट अफेक्ट योर कम्युनिटी. फिर है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, एयर विच इज composed of so many gases, and जो सबसे ज्यादा abundant gas कौन सी है, nitrogen, उसके बाद oxygen और उसके बाद carbon dioxide and other gases. और उसमें जो pollution हो रहा है by the burning of fossil fuels, agricultural waste जो जिसको हम burn करते हैं, जैसे cow dung है तो इसको हम जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो उसके कारण से भी एयर पोल्यूशन होता है. एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, माइनिंग ऑपरेशंस एंड इंडोर एयर पोल्यूशन, सो देयर आर मेनी थिंग्स. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अस्थमा की बीमारियां और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ. तो उसके सोल्यूशंस क्या है, यूज द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें. दिल्ली में हमने देखा ना, लोगों ने वहां पर इवन ऑड गवर्नमेंट ने वहां पे लागू किया तो उसके कारण से कितना फर्क पड़ा. कंजर्व द एनर्जी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. द एम्फेसिस इज ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज द एफिशियंट डिवाइसेज. नॉइज पोल्यूशन, एनी अनवॉन्टेड साउंड विच इज नॉट, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइस. किसी भी चीज में तो वो आपको हेडेक क्रिएट करती है, कान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. और उसके क्या कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में इतनी मशीन्स रन होती है तो उसके कारण से देयर इज पुअर अर्बन प्लानिंग, सो मेनी सोशल इवेंट्स, रात भर डिस्को चलता रहता है. सो ट्रांसपोर्टेशन नॉइस, तो कितनी सारी चीजें हैं जिसके कारण से नॉइस पोल्यूशन है. एंड द इफेक्ट्स आर हियरिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, सारी रात लोग डांस करते रहे किसी को नींद नहीं आई. और कुछ जैसे कुछों के घर रेलवे प्लेटफॉर्म्स के पास होते हैं और कुछों के घर एयरपोर्ट्स के पास होते हैं तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है. सो देयर आर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज ऑल्सो एंड देयर इज ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग. सो कितने डेसिबल्स, साउंड को हम डेसिबल्स में नापते हैं तो इसमें दिखाया गया है. So what are the effects of noise pollution? There is permanent hearing loss, high blood pressure, insomnia, labored breathing, stress, altered brain chemistry, increase in crime, and permanent damage of the to the voice. Remedies kya hai? Turn off your electronics, make soundproof, make your space soundproof, and mask or cancel the noise. वैसे आजकल ear plugs भी आने लग गए हैं जो आप अपने कान में लगा करके रख सकते हैं, उनका कोई dangerous effect नहीं होता है. बहुत बार meditation करने के लिए भी वो ear plugs होते हैं, उनको वो आप बाहर की कोई sound आपको सुनाई नहीं देती है. तो अगर आप sound sleep चाहते हैं तो आप वो use कर सकते हैं. Now the global warming, जो एक बहुत बड़ा आजकल एक टॉपिक है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है और वो किस कारण से होती है? धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है. धरती का तापमान बैलेंस रहे वो बहुत जरूरी है. और इसमें मेजर रोल प्ले करने वाली गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारी वो फ्रेंड भी है लेकिन अगर वो एनवायरमेंट में एक्सेस हो जाए तो वो बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में है तो वो एक लेयर बना लेती है, एक फिल्म बना लेती है अर्थ के चारों तरफ. और वो जो सन से रेज आ रही है उन रेज को ट्रैप कर लेती है. जब सन से रेज आती है और अर्थ से टकराती है तो द रेज गेट रिफ्लेक्ट बैक और वो सन के पास वापस चली जाए या एनवायरमेंट में स्पेस में वापस चली जाए, वो वापस जाने के बजाय CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप कर लेती है. लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि CO2 लेवल ज्यादा हो गया है तो वो ट्रैपिंग भी ज्यादा हो रही है. तो ज्यादा हीट जो है वो अर्थ में रिटेन हो रही है और वो एस्केप आउट नहीं हो रही है स्पेस में, जिसके कारण से हमारा प्लैनेट ओवर हीटेड हो रहा है. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी मदद भी करता है टू कीप आवर प्लैनेट वार्म, लेकिन अगर ये गैस ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो हमारा प्लैनेट ओवर वार्म हो रहा है, जिसके जो बहुत हार्मफुल है क्योंकि इसके कारण से हमारे पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, हमारा जो ओशंस का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. एंड देयर आर सो मेनी अदर इफेक्ट्स. और हमारा क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है उसके कारण से, क्योंकि अर्थ अपने आप को कूल करने की भी कोशिश करती है. ग्लोबल, क्योंकि अर्थ जो है जैसे बॉडी है आपकी, ऐसे अर्थ की जो बॉडी है, जैसे आपकी बॉडी को बुखार हो रहा है, बुखार है तो वो क्यों है, आपको बुखार है तो वो क्यों है? क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है, बॉडी उसको क्योर करने के लिए फाइट कर रही है, अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करने की कोशिश कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, जिसका सिम्टम क्या है कि आपको बुखार हुआ है. तो बॉडी आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस होता है, ऐसे अर्थ के अंदर भी हीलिंग प्रोसेस है. तो अर्थ अपने आप को कूल करने की भी कोशिश करती है, गर्म है तो कूल करने की कोशिश करती है. इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि कितने जगह पे स्नो, ओवर स्नो होता है, कितना स्नो जो है इतनी ज्यादा होती है कि और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होती है. तो ये क्लाइमेट शिफ्ट जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण है. और एक और चीज, ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर क्या है? ओजोन एक गैस होती है, इसका फॉर्मूला है O3. और ये गैस कहाँ होती है? हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बिल्कुल टॉप पे. तो ओजोन लेयर जो O3 है, और हम लोग जब यहां पर जैसे हमारा एयर कंडीशनर है या हमारे जो डिओड्रेंट की बॉटल्स हैं या हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो ये चीजें जब हम यूज करते हैं तो इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थ के इतने ऊपर लेवल तक पहुंच जाते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के O3 जो ओजोन है उसके साथ रिएक्ट करके उसको ब्रेक कर देते हैं। तो O3 जो हमारा ओजोन है वो ब्रेक होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लेयर वहां खत्म हो जाती है। तो ऐसे कहीं जिसको हम होल कहते हैं, तो जहां जहां ओजोन जो है डिप्लीट हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, वो लेयर छोटी पड़ गई है, वहां हम कहते हैं एक होल बन गया है ओजोन लेयर में, और वहां से डायरेक्ट जो सन से जो डायरेक्ट रेज आती हैं जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी होते हैं वो अब हमारी अर्थ के अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे कितने होल्स हमने देखे, जैसे दिल्ली में आप जाओगे, दिल्ली में ओजोन लेयर पे ऊपर होल है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो चुका है। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये 20 डेडलीएस्ट इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो मैं आपको बताना चाहती हूं। जैसे स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का बढ़ना, बीमारी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के, कितनी कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले हम कभी सुनते भी नहीं थे, और आज आप नई नई बीमारियों के नाम सुनते हो, नए नए तरीके के मच्छर पैदा हो गए, है ना। तो ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वार्मर वाटर्स एंड मोर हरिकेन्स, हर साल कोई ना कोई अमेरिका में हरिकेन आता ही आता है, सो इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्राउट्स एंड हीट वेव्स, सूखा पड़ने के अंदाज और बहुत हीट वेव्स, बल्कि 2005 वॉज रिकॉर्डेड एज द मोस्ट वार्मेस्ट ईयर, जो पूरी सेंचुरी का सबसे ज्यादा गर्म, जिसमें लोगों ने महसूस किया कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर था कि पानी रखे रखे गर्म हो जाता था अपने आप। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पोलर आइस कैप मेल्टिंग, मोर फ्लड्स, क्योंकि पानी कहाँ बरसना है, किधर बरसना है, क्लाइमेट शिफ्ट होने के कारण एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी ही डिस्टर्ब हो जाती है। दे आर फायर्स एंड वाइल्ड फायर्स, मतलब जंगलों में आग लगना, जब कहीं पर फ्लड होगी और कहीं पर पानी नहीं बरसेगा तो जंगल सूख जाएंगे, और सूखेगा तो उसमें अपने आप आग लगेगी। एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, अर्थ डेथ बाय स्मॉग, जब आप जैसे दिल्ली या मुंबई या कोलकाता इन सिटीज में आप जाते हो तो यू कांट सी द स्काई का रंग क्या है, ब्लू है, वो ब्लू स्काई आपको दिखाई ही नहीं देता, आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, वो ग्रे ग्रे सा स्काई दिखाई देता है जो एक्चुअली स्काई नहीं है, दैट इज स्मॉग। जो पॉल्यूशन है, जो स्मोक है, वो सब एक जगह एक लेयर बना लिया है उसने, पूरी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर, जो पूरा रीजन है उसके ऊपर, और आप सिर्फ उसी को देख पाते हो, सो दैट इज कॉल्ड स्मॉग। जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं दैट इज ऑल हार्मफुल गैसेस। डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बन जाना, जब पेड़ नहीं होंगे तो रेगिस्तान बन जाएंगे। एंड देयर आर सुनामीज ऑल्सो। कोल्ड वेव्स, इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी, मोर डेंजरस थंडर स्टॉर्म्स, माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। जब एक जगह कहीं एक कंट्री में या एक कॉन्टिनेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां के लोग नेचुरली कहीं और शिफ्ट होंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। तो इसके कारण से ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। मोर आउटब्रेक ऑफ डेडली डिजीजेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनिमल एक्सटेंशन। फिर है डिमिनिश्ड फूड एंड वाटर सप्लाईज, एनिमल अटैक्स, जंगलों में जानवर रहते हैं, जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो जानवर शहरों की तरफ आएंगे। स्लो डाउन ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है कि जो समुद्र में जो सॉल्ट है, जो समुद्र में नमक है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाना, जो समुद्र में नमक है वो अगर बैलेंस्ड क्वांटिटी में नहीं है या फिर वो कम है या ज्यादा हो गया है तो उसके कारण से भी थंडर स्टॉर्म, सुनामीज बनते हैं। ये बात हमको पता ही नहीं थी इससे पहले। और जब पोलर आइस कैप मेल्ट होता है, पोलर आइस मेल्ट होती है, तो कितना फ्रेश वाटर हमारे ओशंस के अंदर जाता है, जिसके कारण से हमारा थर्मोहेलाइन जो सर्कुलेशन है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण से बहुत सारे स्टॉर्म्स और ये सब बनता है। फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है, बूस्टिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, द एनर्जी यूज्ड टू पावर हीट एंड कूल आवर होम्स बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज इज अ सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इट मस्ट बी मिनिमाइज्ड। द सॉल्यूशंस आर ग्रीनिंग आवर अर्थ, जितना हम पेड़ लगाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पेड़ लगाने के ऊपर ही है, ट्री प्लांटिंग। सो ट्री प्लांटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। सो हाउ टू चूज अ ट्री, कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है। पेड़ वो लगाएं जो आपकी क्लाइमेट के अनुसार हो, वहां उस रीजन की क्लाइमेट के अनुसार हो, उस एरिया के अनुसार हो। सो ट्री लगाने से हमको क्या क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, प्राइड, बायोडाइवर्सिटी, 6 tons CO2, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। तो पेड़ों का क्या फायदा है, पेड़ लगाने से क्या क्या मिलता है। पेड़ हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, पेड़ लगाने से भी बारिश होती है। पेड़ लगाने से होती है या नहीं होती है बारिश, हाँ कि ना, कैसे होती है। जो रेन फॉरेस्ट है आजकल वो खत्म होते जा रहे हैं, अदरवाइज पहले जो हमने पहले जो पेड़ होते थे उन्हीं के कारण से ही बारिश होती थी। आज भी हम देखा कि हम लोग महाबलेश्वर गए थे और वहां इतनी ग्रीनरी है कि वहां पर पूरे टाइम वो जो काले बादल हैं वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं और इतना अच्छा मौसम रहता है। इट इज जस्ट बिकॉज कि वहां ग्रीनरी है, उसके कारण से ही मौसम इतना अच्छा रहता है और बारिश कभी भी हो सकती है। तो केवल ग्रीनरी से, पेड़ों से भी इतना ज्यादा असर होता है। वो क्यों होता है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में पेड़ होते हैं तो ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है उनकी लीव्स से, और जितना वाटर इवेपोरेट होगा उतना ही बादल बनेगा और बारिश होगी। इसलिए ज्यादा पेड़ लगाएं। तो एडवांटेजेस क्या है पेड़ों के, अभी भी हमने देखा पेड़ क्या है, हमारी टॉप सॉइल को भी बचा करके रखते हैं और उसको वॉश अवे होने से बचाते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो अपने एनवायरमेंट को ग्रीन बनाएं। सो दिस इज द जेनरोसिटी ऑफ द ट्रीज, दे फिल्टर आउट एयर और कितना हमारा काम आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ओम शांति।